अभिराम ठाकुर के बारे में पिछले साल हिजग्रेस माधवानंद प्रभु ने पूरा अभिराम लीलामृत से उनका वर्णन किया था। तो जो भक्त उनके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो वो आप हमारे अपने मंदिर की वेबसाइट से आप लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभिराम गोपाल ठाकुर का आप देखेंगे तो उनका आविर्भाव दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि वो मालूम ही नहीं किसका आविर्भाव कब हुआ उनका, क्योंकि कलयुग में उनका आविर्भाव हुआ नहीं। ही इज एसोसिएट फ्रॉम द्वापर युग। कृष्ण लीला से ही अभिराम ठाकुर जो हैं वो अप्रकट नहीं हुए कृष्ण लीला के अंदर। दादर अभिराम गोपाल ठाकुर अभिराम गोपाल के रूप में जाने जाते थे, और वही फिर सीधा चैतन्य लीला में। तो वही अभिराम ठाकुर जो हैं अभिराम गोपाल, बाद में अभिराम गोपाल अभिराम ठाकुर के रूप में नित्यानंद प्रभु के पार्षद बने बंगाल के अंदर। तो उनके बारे में ये समाधि पुस्तक से महानंद स्वामी महाराज ने लिखा है, पूर्वतः अभिराम गोपाल ठाकुर श्री रामदास, उनका नाम था, द्वादश गोपालों में से एक थे जो भगवान बलराम के संग अवतरित हुए थे। गौर लीला में वे श्री नित्यानंद प्रभु के एक अंतरंग भक्त थे। एक दिन सख्य रस के भावावेश में, एक्चुअली अभिराम ठाकुर जब गौर लीला में भी थे तो जब पर भी वो एक गोपाल के वेश में, गोपाल के भाव में रहा करते थे, एक सख्य भाव के अंदर। तो वो एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, एक दिन सख्य रस के भावावेश में अभिराम ने एक ग्वाल बाल की भांति बंशी बजानी चाही। जंगल में खोजने पर उन्हें एक लठ मिला जिसे 16 व्यक्ति भी नहीं हिला सके। 16 लोग उस लकड़ी के बड़े ढेर को नहीं हिला सके। अभिराम ने वह लट्ठा एकाएक उठा लिया, उसकी वंशी बनाई और बजाने लगे। तो क्योंकि द्वापर युग से हैं, एक ग्वाल बाल के भाव में अभिराम गोपाल जय मंगल नामक एक चाबुक धारण कर लेते हैं। उनका स्पर्श करने वाले व्यक्ति में कृष्ण प्रेम संचारित हो जाता। जनश्रुति के अनुसार श्रीनिवास आचार्य को इसी प्रकार शुद्ध प्रेम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। तो अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक थी जिसका नाम था जय मंगल, और उस जय मंगल से यदि किसी की पिटाई करते थे तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था, है ना। तो कई साल पहले इसमें गोपाल कृष्ण महाराज ने इस पर लेक्चर दिया था। तो महाराज कहते हैं, वी शुड प्रे टू अभिराम ठाकुर, ही कैन बीट अस विद हिज व्हिप, जय मंगल, वील ऑल गेट कृष्ण प्रेम। महाराज से, बट वी आर नॉट दैट प्योर, कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए अभिराम ठाकुर से कि वह हम पे कृपालु हों और उस जय मंगल नामक चाबुक से हमें भी एक जो है कृष्ण प्रेम दें, लेकिन हमें भी उतने शुद्ध नहीं है। अभिराम गोपाल गौड़ीय वैष्णवों के, अभिराम ठाकुर गौड़ीय वैष्णवों के एक शक्ति संपन्न आचार्य थे। नास्तिक एवं निंदक उन्हें देखते ही भय से भाग खड़े होते थे। वे नित्यानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रबल प्रचारक थे। वे प्रकांड शास्त्र वेता होने के साथ साथ गीत संगीत एवं नृत्य में भी पारंगत थे। अभिराम अपने घर का उपयोग प्रचार तथा वैष्णव सेवा हेतु करते थे, निद्रा हेतु नहीं। उनका घर कीर्तन व कृष्ण कथा से अनुगुंजित रहता था और वहां शुद्ध भक्त गणों का आना जाना लगा रहता था। उनके समाधि 64 समाधि पीठ में स्थित है। तो अभिराम ठाकुर की एक और भी लीला है, बताते हैं कि अभिराम ठाकुर किसी भी भगवान की मूर्ति को या अर्चा विग्रह प्रणाम करते हैं, और यदि वह अर्चा विग्रह में वास्तविकता में भगवान नहीं है तो अर्चा विग्रह या शालिग्राम शिला फट जाती थी, ऐसा होता था। और यदि वो कोई उन्हें प्रणाम करता और वो किसी व्यक्ति को प्रणाम करें वापस, और उसके अंदर अगर रंच मात्र भी भौतिक इच्छाएं हैं तो वो व्यक्ति, उसका ये भौतिक शरीर तुरंत समाप्त हो जाता था। तो लोग बहुत डरते थे जब भी, तभी इसमें लिखा है नास्तिक एवं निंदक उनको देखते ही भाग खड़े होते थे। तो उनके अंदर ही शक्ति थी, और जब वो श्रीखंड में आए तो वहाँ पे मुकुंद सरकार, नरहरी सरकार और उनके मुकुंद सरकार के पुत्र थे रघुनंदन। तो रघुनंदन छोटे बच्चे थे, आपको मालूम नहीं कथा, वसंत पंचमी के दिन का आविर्भाव या फेस्टिवल आता है, उत्सव आता है। तो रघुनंदन ठाकुर छोटे बच्चे थे, पिता ने बोला कि आप भोग लगाना भगवान को, मैं जा रहा हूँ आज। तो रघुनंदन ने भगवान को भोग लगाया, लेकिन लगाना आता नहीं था, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने बोला है भोग लगाने के लिए, आप खाओ, लेकिन देखा भोग की थाली तो वैसी रखी है। तो जो रघुनंदन है वो लाठी लेकर के आए भगवान से, बोले आप नहीं खाओगे तो मैं आपकी पिटाई करूंगा। पहले रोने लगे, भगवान फिर भी नहीं आए, तो भगवान को खाना पड़ा। तो रात को आए मुकुंद सरकार और उन्होंने जो है बोला रघुनंदन से कि महाप्रसाद लाओ। बोले महाप्रसाद कौन सा महाप्रसाद, भगवान तो सब खा गए। बोले कि लगता है खुद खा गया और जो है कह रहे हैं कि कोई महाप्रसाद नहीं बचा। तो अगले दिन उन्होंने कहा चलो टेस्ट करता हूँ मैं। फिर अगले दिन छुप करके उन्होंने फिर से बेटे को बोला तुम भोग लगाना, और बेटा भोग लगा रहा था और मालूम नहीं था मुकुंद सरकार पीछे छुपे हुए थे पर्दे के पीछे और देख रहे थे। तो मुकुंद रघुनंदन फिर रोने लगे, भगवान नहीं प्रकट हुए। फिर लाठी लेकर के आए तो भगवान खाने लगे। तो मुकुंद सरकार जब देखा तो समझ गया कि रघुनंदन शुद्ध भक्त है या बहुत बड़े उन्नत भक्त हैं, हालांकि छोटे बालक थे। तो यही उस श्रीखंड के अंदर अभिराम ठाकुर आए तो सब भक्त तो खुश भी थे और थोड़े डरे हुए भी थे। तो वहाँ जब आए तो रघुनंदन जो बच्चे थे उन्होंने अभिराम गोपाल ठाकुर को प्रणाम किया और अभिराम ठाकुर ने दोबारा प्रणाम किया। तो सब डर रहे थे अभी ये बच्चा तो गया, छोटा बच्चा है अभी, क्योंकि दोबारा प्रणाम करेंगे थोड़ी भौतिक इच्छाएं हुई तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन रघुनंदन ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। तो दिस प्रूव्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रघुनंदन ठाकुर एक्चुअली, कि रघुनंदन कितने उन्नत भक्त हैं, कि उनके उन्नत नहीं शुद्ध भक्त हैं, कि उनके अंदर रंच मात्र भौतिक इच्छाएं नहीं है। तो ये एक लीला और अभिराम ठाकुर की आती है और बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हमको ज्यादा जानकारी नहीं, इसलिए हम कह रहे थे कि माधवानंद प्रभु के आप लेक्चर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और भक्ति रत्नाकर इत्यादि, और अभिराम लीलामृत भी पूरा एक ग्रंथ है, तो वो भी जो है उन्होंने उस पर से बताया था। श्रील अभिराम गोपाल ठाकुर की, श्रील अभिराम ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की, गौर प्रेमानंद। तो श्लोक संख्या 13 में केवल एक लाइन का अनुवाद है, 14-15 तात्पर्य है, 14-15 में है नहीं, तो 16 श्लोक लेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद, स्कंद 7 अध्याय 1 शीर्षक समदर्शी भगवान, श्लोक संख्या 13-16। तो 13वां श्लोक इस प्रकार से है, अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणः प्रीत्या महाकृतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे। तो आप जानते हैं परशुराम महाराज ने प्रश्न पूछा था कि भगवान ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं, जबकि उनको समदर्शी होना चाहिए, और सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर दे रहे हैं कि भगवान निर्गुण हैं, भगवान का और अनेक भगवान के जो दिव्य गुण हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि नहीं, भगवान जो हैं वो समदर्शी ही हैं, संभाव रखने वाले हैं, वो पक्षपात नहीं करते, और इसको अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। और अब समझाते हुए वो एक शास्त्र प्रमाण देंगे, अभी गुरु प्रमाण, और वो आज से शुरू होगा। कि शायद ये वास्तविकता में वैदिक शैली भी इस प्रकार से है, जैसे हम देखते हैं कोर्ट केसेस वगैरह भी जब होते हैं, कोई जज अपना निर्णय देता है तो वो पुराना सेक्शन कोट करेगा, अंडर सेक्शन दिस 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 रिजल्ट इज गिवन, और पहले ऐसे ही समान केस के अंदर जो है ऐसा निर्णय दिया गया था। तो भागवत में भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हम प्रथम स्कंद का देखते हैं कि व्यासदेव परेशान थे, नारद मुनि आते हैं बोलते हैं कि आपने जितनी अधिक भगवान की महिमा का गुणगान होना चाहिए आपने उस मात्रा में नहीं किया है, और फिर भक्ति की महिमा बताते हैं नारद मुनि को, और ये बताने के बाद और व्यासदेव का संशय दूर करते हैं, और फिर अपना स्वयं का प्रमाण देते हैं वो, कि मैं अपने बारे में बताऊं आपको कि जो मैं बता रहा हूं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो हूं मैं स्वयं हूं, और फिर अपने जीवन के बारे में बताते हैं। और अन्य अन्य बहुत सारी जगहों पे हमें यही शैली मिलती है कि वो किसी शास्त्र प्रमाण या गुरु प्रमाण जो है या किसी आचार्य प्रमाण को वहाँ उद्धृत करते हैं। ये वास्तविकता में शैली है अध्ययन करने की। तो सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे अभी कोट करेंगे जो है, तो इस यही है आज का अनुवाद। हे राजा, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करने पर भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की स्थली पर जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तब भी वे कितने निष्पक्ष थे इसका पता चलता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने अब तक भक्ति भगवान तीनों गुणों से ऊपर है वर्णन किया, लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने नारद जी से कुछ प्रश्न पूछा और नारद जी उत्तर देने में उनको कुछ लीला वर्णन करेंगे। वो लीला कौन सी है? नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की कथा होगी। तो 14 और 15 श्लोक उसका अनुवाद इस प्रकार से। हे राजा, महाराज पांडु के पुत्र, अभी सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं और ये जो आज का श्लोक 16 श्लोक है वो फिर युधिष्ठिर महाराज कहेंगे। महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में स्वयं विलीन होते देखा, अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। तो आज का श्लोक है। तो प्रसंग क्या है कि शिशुपाल जो ना भक्त हैं ना कोई अध्यात्मवादी हैं, वो तो एक कृष्ण के निंदक हैं, और निंदक ऐसे बचपन से ही, अभी उनके गुणों का वर्णन भी आएगा 2-3 श्लोक बाद में, जब से पैदा हुए तब से भगवान कृष्ण को गालियां दे रहे थे वो और उनका भाई दंतवक्र। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी सायुज मुक्ति प्राप्त हुई ऐसा कैसे है? तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा सबके सामने जब भगवान ने शिशुपाल का सर काट दिया तो शिशुपाल के शरीर में से एक दिव्य तेज निकला और भगवान के शरीर में विलीन हो गया। तो ये देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत ही प्रश्न पूछते नारद मुनि से कि ऐसा कैसे हुआ। तो महाराज जो है, तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री युधिष्ठिर उवाच, अहो अति अद्भुतम् हि एतत्, दुर्लभ एकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिः चैद्यस्य विद्विषः। श्री युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतम् ह्येतत्, दुर्लभ एकान्तिनाम् अपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। श्री युधिष्ठिर उवाच, अहो अत्यद्भुतम् ह्येतत्, दुर्लभ एकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। श्री युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अहो ओहो अत्यद्भुतम् अत्यंत आश्चर्यजनक ही निश्चय ही एतत् यह दुर्लभ प्राप्त करने में कठिन एकांतिनाम अध्यात्मवादियों के लिए अपि भी वासुदेवे वासुदेव में परे परम तत्वे परम सत्य प्राप्ति ही प्राप्ति चैद्यस्य शिशुपाल की विद्विषः ईर्ष्यालु। अनुवाद, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राप्य है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? तात्पर्य, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी जन ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था न ही भक्त, फिर भी मात्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी सदगति प्राप्त हुई। निश्चय ही यह आश्चर्यजनक था, अतएव महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर भगवान की इस रहस्यमय कृपा का कारण पूछा। हरे कृष्ण। तो अगर समय बचेगा तो इस प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, अदरवाइज आई विल जस्ट स्टिक टू दिस परपोर्ट। मैं प्रभुपाद जो तात्पर्य है इसी को कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आगे बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ये उत्तर देंगे, और बहुत ही विस्तार से प्रभुपाद जी बहुत ही बड़े बड़े तात्पर्य देंगे भगवान की महिमा गुणगान करने, और वो सुन करके निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो इस भौतिक जगत के सारे नियमों से बिल्कुल ही परे हैं, ऐसा है, और वास्तविकता में अचिंत्य हैं बिल्कुल। जो चीज़ हम कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे दिव्य भगवान के गुण हैं। तो इसीलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि आज तो केवल प्रश्न ही पूछा है ये, और प्रसंग सबको मालूम ही है कि शिशुपाल किस प्रकार से वध हुआ था। ऐसी ये घटना हम देखते हैं, भगवान को वध करने के लिए वृंदावन में एक असुर आया था, उसका नाम था अघासुर। तो भगवान ने उसके शरीर में प्रवेश किया, और जब अघासुर का वध किया तो भी हम ऐसा ही घटना देखते हैं कि अघासुर के शरीर से दिव्य तेज निकला और भगवान के जो है शरीर में प्रवेश कर गया। हालांकि अघासुर के कोई पीछे इतिहास वर्णन नहीं किया जाता वहां पे, सुखदेव गोस्वामी डोंट एक्सप्लेन द पास्ट ऑफ अघासुर। लेकिन यहाँ पे जो शिशुपाल और दंतवक्र, इन दोनों का इतिहास नारद मुनि फिर पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। एक्चुअली वर्णन क्या करेंगे, वो तो इतना बोल देंगे कि जय विजय थे, दोनों भगवान के पार्षद थे। युधिष्ठिर महाराज तुरंत प्रश्न पूछते हैं उनसे, पार्षद थे तो असुर कैसे बन गए? और तब वो पूरी लीला जो है अनफोल्ड होगी, नरसिंह भगवान की जो लीला है। तो ऐसे और तो, लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका अनुवाद एक बार फिर पढ़ दें। अनुवाद, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राप्य है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? अब प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि ज्ञानी और भक्त दो प्रकार के अध्यात्मवादी लोग होते हैं। ज्ञानी जो होते हैं वो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, भगवान में मिलना चाहते हैं या ब्राह्मण में मिलना चाहते हैं, भक्त नहीं चाहते हैं। लेकिन शिशुपाल ना भक्त था ना ज्ञानी था, बहुत ईर्ष्यालु था, असुर प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी उसके प्राप्त हुए, ये प्रश्न है। लेकिन प्रभुपाद ने इस लाइन को के ऊपर ही हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ज्ञानी और भक्त क्या होते हैं बेसिकली। तो ज्ञान योग का जो मार्ग है, हम देखते हैं कि वेदों के अंदर किस प्रकार से जीवों को जो है जीवों को ग्रेजुअली शनै शनै धीरे धीरे उनका उनको अपलिफ्ट किया जाता है। कि वेदों जो माध्यम बताए हैं व्यासदेव जी ने, कैसे वैदिक विधियों का पालन करके व्यक्ति का धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास होता है। तो पहले वो जानवर के स्तर पे होता है, उसके बाद वो कर्मकांड करना शुरू करता है, तो कम से कम किसी सुपर अथॉरिटी को मानता है कर्मकांड के ऊपर। बाद में जब वो थोड़ा और विकास होता है उसके अंदर, तो करते करते वो कर्मयोग करना शुरू करता है, और कर्मयोग में पहले सकाम कर्मयोग और उसके बाद निष्काम कर्मयोग, और करते करते जब उसका और शुद्धिकरण होता है तो फिर वो क्या पालन करता है, ज्ञान योग का पालन करता है। और ज्ञान योग का जब पालन करते हैं थोड़ा परिपक्व होता है, या फिर जब वो ब्राह्मण में मिलना चाहता है तो वो कहाँ क्या प्रयास करता है, अष्टांग योग का प्रयास करता है। और जब शुद्धिकरण होता है तो अनेकों अनेकों जन्मों के बाद भगवान की कृपा के बाद वो भक्ति योग का पालन करता है, और मैक्सिमम लोग तो इस बीच में ही उनका पतन हो जाता है, ऐसा है। अष्टांग योग करे, चाहे वो हठ योगी हो, चाहे जो है कोई भी ज्ञान योगी हो या कर्म योगी भी हो, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है ये खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर आधारित है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्ति योग कृपा के ऊपर आधारित है। और भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है, उसका शॉर्टेस्ट तरीका है भक्तियों के माध्यम से। बहुत सिंपल, अगर किसी व्यक्ति को जानवर के स्तर पे हो, चाहे कर्मकांड के स्तर पे हो, सकाम कर्मियों के स्तर पे हो, निष्काम कर्मियों के स्तर पे हो, ज्ञान योग के स्तर पे हो, अष्टांग योग के स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे वो हो, यदि भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से उन्हें किन्हीं महान भक्तों का संग प्राप्त होता है, तो उसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है और भक्ति मिल जाती है उसे, वो सीधा भक्ति भी कर सकता है। या फिर वो धीरे धीरे इस अनेकों जन्मों के बाद योगिक लेडर के द्वारा जो है आगे बढ़ता है। और कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेकों जन्मों के बाद ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, कोई व्यक्ति ज्ञान से ही मेरे क्या करता है, शरणागत होता है, जानता है, क्या जानता है, वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, लेकिन स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और अर्जुन भी इसी दुविधा के अंदर फंसे थे, तो गीता के 12वें अध्याय के प्रारंभ के अंदर अर्जुन कृष्ण से ये जिज्ञासा करते हैं, बड़े खुलासा करके कृष्ण भी तसल्ली से उत्तर देते हैं इसका। वो इस प्रकार से है, अर्जुन ने पूछा, एवं सतज युक्ता ये भक्तास्ताम परियोपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। जो आपकी सेवा में तदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, या जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, या आपके भक्त हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। तो अर्जुन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान बिल्कुल सीधा उत्तर देते हैं, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्त तमामता। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। कृष्ण एकदम फ्लैट आउट उत्तर देते हैं, फिर आगे बता रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। वही मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली। ठीक है, तो आप बोलेंगे फिर तो क्या फर्क पड़ता है, हम सीढ़ी से जाएं चाहे एलिवेटर से जाएं, लेकिन कृष्ण और खुलासा करते हैं। अर्जुन भी पूछ सकते चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कृष्ण अभी अर्जुन के मन के संशय को और डाउट क्लियर करते हैं। तो ये काफी फेमस श्लोक है, क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त आय गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो पहला तो क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बहुत ही कष्टप्रद है जो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, और साधारण व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं, तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। और हम देखते हैं कि एक्चुअली जो वास्तविक ज्ञानी है वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है जब वो भक्त बनता है, नहीं तो ज्ञान योगी भी जो है अनेकों जन्मों के बाद इस सिद्धि को प्राप्त करता है। और शास्त्रों में हम कई सारे उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण है जो भागवतम के प्रवक्ता हैं, जो वक्ता हैं, कौन है वो, सुखदेव गोस्वामी। वो स्वयं निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते थे, उपासना करते थे, और जब वो जंगल में उन्होंने कुछ लकड़ी काटते हुए बच्चों को सुना और भगवान के सुंदर नाम रूप गुण लीला के बारे में सुना, तो अपनी मति को धिक्कार कर रहे थे, अरे मैं तो इतना मूर्ख था, धिक्कार है मेरी बुद्धि को कि मैं निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहा था, मुझे जानकारी नहीं थी भगवान के साकार रूप की, उनके मधुर माधुर्य से पूर्ण नाम रूप गुण लीला की। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी क्या होते हैं, वो साकार रूप की पूजा करने लगते हैं, और यहाँ तक कि भागवतम की रचना बताते हैं जो भगवान के साकार रूप की महिमा का पूर्णतः वर्णन करते हैं। अन्य उदाहरण है चतुष्कुमार, वो चतुष्कुमार भी सब ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब भगवान के, इसलिए उनको वैकुंठ के अंदर एंट्री प्रवेश नहीं था, और जब श्राप मिला तो भगवान बाहर आए, और भगवान की तुलसी की सुगंध सुन करके, सूंघ करके, और भगवान के रूप को देख करके, वो भी जो है निराकार ब्रह्म से जो है साकार रूप की उपासना करने लगे। ऐसे ही हम देखते हैं महाप्रभु ने भी ऐसे कई सारे ब्रह्मवादियों को परिवर्तित किया। उनमें से एक थे बनारस में सब मायावादियों के नेता प्रकाशानंद सरस्वती, शायद 60,000 या कोई का 10,000 डिसाइपल, उनके कितने सन्यासी शिष्य थे, अभी मेरे को पूरा फिगर याद नहीं है, 10,000 थे या 60,000 थे, जो भी थे, लेकिन बहुत सारे सन्यासी शिष्य थे। और महाप्रभु गए वहां पे और महाप्रभु की बड़ी निंदा करते थे ये जो मायावादी सब शिष्य थे, लोग थे। तो कह रहे हैं भावुक है सन्यासी। और तो महाप्रभु, आपको बहुत बड़ी लीला है, लेकिन महाप्रभु जब मथुरा से फिर वापिस आए और वहाँ तपन मिश्र, चंद्रशेखर आचार्य और एक महाराष्ट्र ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि हम आपकी निंदा नहीं सुन सकते, तो आप जो है जरा कुछ कीजिए, हमारा हृदय फटता है आपकी निंदा सुन के। और महाप्रभु ने कहा, और कह रहे कल मैंने सब सन्यासियों को आमंत्रित किया है प्रसादम के लिए, आप भी वहाँ पे आइएगा। उनको मालूम था महाप्रभु रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मायावादियों के साथ खाते नहीं थे, मिलते जुलते नहीं थे बिल्कुल भी, अपने आचरण से 2 महीने रुके थे महाप्रभु वाराणसी के अंदर, लेकिन इन मायावादियों से मिलते नहीं थे। लेकिन फाइनली इन जब भक्तों ने प्रार्थना की कि इनका उद्धार कीजिए, तो प्रकाशानंद सरस्वती के वहाँ पे गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी भक्त बनाया। और फिर वाराणसी के अंदर महासंकीर्तन चालू हुआ, सारे जो मायावादी थे, ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी थे, सब वहाँ पे संकीर्तन करने लगे। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में 5 अध्याय वाराणसी के बारे में डेडिकेटेड है, यू नो, और एक अध्याय का नाम है द रेजिडेंट्स ऑफ वाराणसी बिकेम वैष्णवस, कि वाराणसी के सब जो नागरिक हैं वो वैष्णव बन जाते हैं। तो ये तीसरा उदाहरण है। और चौथा है महाप्रभु के महान भक्त बाद में बने सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी पूरे निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन महाप्रभु ने 7 दिन उनके वेदांत के ऊपर जो है भाष्य सुने, कुछ नहीं बोले महाप्रभु, ना कुछ बोले ना, तो उनको लगा अरे भाई आपको समझ भी आ रहा है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा। उन्हें बोला हाँ वेदांत तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपके जो एक्सप्लेनेशन है, जो भाष्य है, वो बादल के समान है। वेदांत तो सूर्य के समान है, लेकिन आपके जो भाष्य है वो किसके समान है, बादल के समान है, इसीलिए मेरे को जो है वो सूर्य को ढक रहा है बल्कि ऐसा है। तो बोला अच्छा ऐसा है तो आप बताइए आपकी क्या। तो महाप्रभु 7 दिन उनको फिर जो है 7 डे कोर्स बताते हैं वेदांत सूत्र के ऊपर, और फिर वो पूर्णतः उनकी व्याख्या सुन के परिवर्तित हो जाते हैं। और मैं बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य की एक और लीलाएं बताऊंगा कि भक्ति में आने के बाद एक कठोर हृदय के जो निर्विशेषवादी होते हैं, इनका हृदय भी कितना कोमल हो जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन यदि ये ज्ञानी लोग भक्ति में नहीं आते, तो भागवतम कहता है, आई थिंक ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ये, कि उन लोगों का पतन हो जाता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वय असद भावाद अविशुद्ध बुद्ध यह आरुह कृष्णे न परम पदम ततः पतंती अधनादित युष्मदांग्रयः। प्रॉब्लम क्या है इस मायावादी या निर्विशेष ब्रह्म के साथ में, क्योंकि ये सारा प्रयास अपने आप करते हैं और माया देवी छोड़ती नहीं किसी को। तो जब ये लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, शक्तियां प्राप्त होती है, तो ये क्या करने लगते हैं धीरे धीरे, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये अपने आप को ही भगवान घोषित करना शुरू कर देते हैं। समस्या ये होती है, जो ज्ञान योगी जब करते हैं तो अधिकांश ज्ञान योगी अपने आप को भगवान प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। तो ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, क्यों, क्योंकि अरविंदाक्ष मतलब भगवान का नाम है, और उन भगवान अरविंदाक्ष की पूजा ना करके त्वय असद भावात अविशुद्ध बुद्ध है, ये असद भाव को इन्होंने ग्रहण किया, अविशुद्ध बुद्ध है, इनकी बुद्धि क्या है, अविशुद्ध, अशुद्ध बुद्धि है इनकी, और इसीलिए तो अविशुद्ध। आरुह कृच्छ्रेण परम पदम ततः, और ये भगवान के चरण कमलों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राधा उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, पतंति अधः अनार्थ युष्मदांग रहे हैं, इसीलिए भगवान चरण के चरण को ग्रहण ना करके ये क्या होंगे, ये सब पतन हो जाएंगे, ऐसा है न? और क्या पतन का अर्थ क्या है, हम अपने आसपास भी आंख खोल के देखेंगे, थोड़ा बहुत भी यदि हम आंख खोल के देखेंगे, तो हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे मायावादी जो थे या ज्ञान योगी सो कॉल्ड, ये बाद में क्या ले लेते हैं, सोशल वेलफेयर वर्क, पहले तो संन्यास लेते हैं वो कि ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब जो है मिथ्या है, लेकिन बाद में क्या करेंगे, शांति शांति करते बोर हो जाते हैं अभी, है कि नहीं। अभी सोचिए, मान लीजिए हमारे मंदिर में हम मंदिर बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते, दरवाजे बंद कर देंगे, सब पंखा बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया बिल्कुल, और हम बोलेंगे यहाँ पे आके आप क्या करो, शांति की आवाज सुनो, है कि नहीं। आप सब शायद बचपन में या अपने जीवन के अंदर गए भी होंगे ऐसे मंदिरों में या मंदिर में, है कि नहीं, वहां आराम से बैठ के शांति करो, आप देखो कितने समय बैठ पाएंगे, क्लेशो अधिक तरस तेषां, है कि नहीं, वहां बैठे बैठे हम परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये समस्या है ज्ञान योगी के साथ में कि वो आध्यात्मिक जगत की वैरायटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि वहां तो वैरायटी है नहीं, क्योंकि भगवान का तो साकार रूप है नहीं, तो वहां की वैरायटी वो नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्शन क्या है, इस जगत की वैरायटी बहुत दुखदाई है। तो इसलिए अगर कोई भी आकार होगा, कोई भी रूप होगा, कोई भी नाम होगा, तो वो कष्टदायक ही होगा। इसीलिए निराकार, निर्विकार, निर्विशेष और सब उल्टे सीधे नाम, निर्गुण, ताकि कष्ट ना हो। लेकिन क्या होता है तो वो आत्मा ना है कि नहीं, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, इसी भौतिक जगत में आते हैं और फिर सोशल वेलफेयर वर्क करना शुरू कर देते हैं। स्कूल खोलेंगे, थोड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलेंगे, थोड़े धर्मशाला खोलेंगे, थोड़ा जो है प्रसाद तो क्या, लंगर बांटेंगे या कुछ भी इस प्रकार से, तो सोशल वेलफेयर वर्क करेंगे, वो कुछ सामाजिक सुधार कार्य करेंगे इस कारण से, क्योंकि उन्हें कुछ तो करना है। आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण की सेवा करना। आत्मा का स्वरूप नहीं शांति में लीन हो जाना है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं क्लेशो अधिक तरस तेषां, कि उनका जो पाथ है बहुत क्लेशों से पूर्ण है। तो हमने कुछ रीजन लिखे पढ़े कि क्यों उनके मार्ग इतना कष्ट है। तो पहली बात तो एक कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं। अभी किसी आदमी के लिए जिसके पास जवान है, जिसके पास कान है, उसको बोलो तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, कान बंद करके बैठ जाओ, है कि नहीं? ये तो इतनी कष्टदायक स्थिति वैसे ही हो गई, आपको कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं है कि नहीं। देखिए गांधी जी के भी तीन बंदर थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, है कि नहीं? तो भौतिक मत कहो, भौतिक मत सुनो, वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी मत कहो, कुछ ही मत सुनो, तो वो कितना उसके लिए व्यक्ति की, तो अननेचुरल चीज है ये, तो है कि नहीं? अभी दो आदमी बैठेंगे, स्वाभाविक रूप से बातचीत करेंगे ही करेंगे, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बेचारे उनका तो मार्गी, आप सोचिए अगर बोले कि आप सब इकट्ठे हो जाओ, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ सुनेगा नहीं। तो पहला रीजन इसलिए क्लेशो अधिक तरसते शाम, उनका जो है पाद बहुत ही कष्ट है। अभी दूसरा भी उदाहरण देखिए, वो भी थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, इनका लक्ष्य क्या होता है? नेति 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 नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, भगवान ये नहीं, भगवान ये नहीं है, ये जगत मिथ्या है, और ये उनका लक्ष्य रहता है कुल मिलाकर के, कि किस प्रकार से हम कार्यों को नेगेट करें, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कष्टदायक, ये कष्टदायक, ये कष्टदायक, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो उनका फोकस किस पे रहता है? नेगेटिव पे रहता है कि नहीं? तो ये एक प्रकार से तो ये नेगेटिविटी से आसक्ति ही है, अल्टीमेटली इट्स अटैचमेंट। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी आसक्ति किस में रहती है? पॉजिटिविटी के ऊपर। देखिए जैसे ज्ञान योगी क्या करेंगे, कि दुनिया के अंदर बहुत कष्ट है, इसलिए अपनी इंद्रियों को क्या करो, विड्रॉ कर लो, इस अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय मत लगाओ, अर्थात कोई सुंदर रूप है आंखों से देखना नहीं, सुंदर ध्वनि है कान से सुनना नहीं, सुंदर शब्द है मुख से बोलना नहीं, अच्छा सुंदर कोई चीज है उसका स्पर्श नहीं करना। तो इस प्रकार से वो एक्सट्रीम टॉर्चर करते हैं अपने आप को, और इस प्रकार से भी इंद्रियों का निग्रह करते हैं। जैसे क्या करेंगे, हिमालय में जाएंगे सर्दियों के अंदर और गंगोत्री के अंदर अपने आप को गले तक डूबो के खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से वो अपने आप को इस भौतिक जगत के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाना चाहते हैं, भौतिक जो देहात्म स्तर से। अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, अब आप जाइए राजस्थान में या कहीं डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, आसपास जो है गर्म बालू के आसपास अग्नि का घेरा बना लीजिए, और गर्म बालू ऊपर जो है जलता हुआ सूर्य और आसपास अग्नि, और उसके बीच में बैठ जाइए, तपस्या कीजिए। तो ज्ञान योगी ये करते हैं, उनका फोकस यही होता है। लेकिन भक्ति योगी क्या होता है उसका फोकस? पॉजिटिव के अंदर, कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, सारी इंद्रियों को, ऐसा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, खासकर माताजी लोगों को ये प्रत्यक्ष होगा, छोटे बच्चे होते हैं, यदि बहुत शरारती होते हैं तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? चुपचाप बैठ जाओ, है कि नहीं? साइड में जाके बैठ जाओ, शोर मत मचाओ, परेशान मत करो, काम करने दो, है कि नहीं? तो ये कैसा प्रोसेस है? ये ज्ञान योगी का प्रोसेस है। बच्चा बैठ जाएगा, आपका फोकस है उसको नेगेटिविटी से दूर करना, अरे ये खराब कर रहा है, काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, उसको बोला भाई चुप करो, शांति से बैठ जाओ। लेकिन यदि बच्चा कुछ काम करने लायक है यदि, तो आप माता क्या बोलेंगे उन्हें? अच्छा क्या ये कर दोगे, यहाँ छोड़ाओ, ये यहाँ रखाओ, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, है कि नहीं? बच्चे को पॉजिटिवली एंगेज करेंगे, है कि नहीं? कि बच्चे को पॉजिटिवली एंगेज करेंगे तो क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से नेगेटिविटी से दूर हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा अब ये शरारत मत करो, मुझे पॉजिटिवली एंगेज्ड है और ये ज्यादा नेचुरल है कि नहीं? कितनी देर तक बेचारा शांत बैठेगा बच्चा, फिर शरारत करेगा ही करेगा, लेकिन यदि वो पॉजिटिविटी करने में सीखा हुआ है, स्वाभाविक रूप से वो नेगेटिविटी का छोड़ देगा, उसका वो त्याग कर देगा। तो भक्ति योग का प्रोसेस यही है, ऐसे है। और ये हम नौवें स्कंद के महाराज अमृषि कथा में पढ़ते हैं, सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा श्रुत कथो सत कथो दये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्रा स्पर्श अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। तो ये महाराज अम्बरीश गुणगान कर रहे हैं वहां पे कि किस प्रकार से उन सवई मन कृष्ण पदारविंद, अपने मन को क्या किया कृष्ण के पदारविंद में लगाया, वचाम से वैकुंठ गुणानुवरण ने अपने जवान को किसमें लगाया भगवान का गुणगान करने में, करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु हाथों किसमें लगाया मंदिर का मार्जन करने में, श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदये कानों किसमें लगाया भगवान अच्युत की कथा सुनने के अंदर, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्य आंखों को लगाया भगवान के दर्शन करने में, तदभृत्य गात्रा स्पर्श अंग संगमम और अपने स्पर्श इंद्रियों को लगाया भगवान के भक्तों के शरीर दिव्य शरीर का स्पर्श करने के अंदर, और फिर घ्राणम च तत्पाद सरोज सरोवर सूंघने की शक्ति को किसमें लगाया भगवान को जो ऑफर्ड फ्लावर्स हैं उनको पुष्पों को, श्रुतिम और क्या श्रीमत तुलस्याम रसनाम तद अर्पिते और जीभा को किसमें लगाया भगवान को जो अर्पित तुलसी है उनका आस्वादन करने में, और उसका क्या है पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, उस समय तो मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू नहीं होती थी तो अपने पैरों से चल के वो मंदिर में आया करते थे, तो अपने पैरों को लगाया भगवान के मंदिर या तीर्थ स्थलों में जाने के लिए, शीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने सिर को किसमें लगाया भगवान के चरणों में नमन करने के लिए, कामम च दास्य नतु काम काम्यया जितनी उनकी इच्छाएं थी तो किसमें लगाया भगवान की इच्छाओं के अंदर, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, इस प्रकार से उन्होंने जो भगवान उत्तम श्लोक है उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न की। तो कितना अच्छा अच्छा ब्लिसफुल प्रोसेस है कि नहीं, आसान प्रोसेस एकदम सरल है, वही बोले ये मत करो वो मत करो तो क्या आप बोलोगे क्या करें परेशान हो गए छोड़ो यहां से, है कि नहीं। और इसका उदाहरण भी हम देखते हैं, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल नेति नेति तपस्या कर रहे थे, लेकिन मेनका की जब एक झंकार हुई तो तुरंत उनकी सारी इंद्रिय विषय की तरफ अब वो रोक नहीं पाए, चाहे वो थियोरेटिकली वो जानते थे कि ये सब आकर्षण जो है भौतिक है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन जब विषय वस्तु सामने आई तो आकर्षित हो गए वो, और क्या हुआ फिसल गए एक बार मार्ग से, फिर दूसरी बार आई थिंक रंभा आए थे तब वो क्रोध के वशीभूत हो गए ऐसे। लेकिन उसके विपरीत भक्ति योगी के लिए कितना सरल प्रोसेस है हम देखते हैं, उदाहरण किसका है नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, पहले वो हीरा भाई वैश्या आई और उसके बाद में मायादेव स्वयं आई, लेकिन वो बिजी है कह रहे टाइम नहीं है अभी बाद में आना, है कि नहीं, अभी माला खत्म नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए आचार्य का नहीं बताते हैं कि भक्त को ऐसे होना चाहिए, जब भी उनके मन में कोई भौतिक इच्छाएं आए तो उस वेश्या के समान है, उसे क्या बोलना चाहिए माया देवी को, उसका लिस्ट रेडी होना चाहिए, 24 घंटे में 26 घंटे का सेवा होना चाहिए उसके पास में, ताकि बोले ये इच्छा रहे अभी टाइम नहीं बाद में अभी इतना सा पेंडिंग का ऐसे, तो उसे कोई टाइम नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, बिजी में बाद में बात करेंगे। अब बिजी आदमी होता है, जैसे एक साधारण उदाहरण देते हैं, लोग क्रिकेट देखते हैं, है कि नहीं, भारत का धर्म है क्रिकेट और सचिन भगवान है ऐसा लोग बोलते हैं कई बार, तो लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है वो कई बार रात के डे नाइट मैच होता है तो रात के 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी नींद यू नो खत्म हो जाती है, परम दृष्टवा निवर्तते हायर टेस्ट है कि नहीं, अभी उनके सामने बढ़िया प्रसाद भी लेके आएंगे प्रसाद या जो भी उनको अच्छा लगता है, तभी भी क्या होगा कोई रुचि नहीं होगी, ठंडा हो जाएगा, गर्म है खा लिया, थोड़ा बहुत नहीं खाया छोड़ दिया साइड के अंदर, क्यों इसे बोलते समाधि, है कि नहीं। वो भी देखा था देहात में अपने ग्रॉस बॉडीली प्लेटफॉर्म से वो ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन कहाँ पहुंचे मेंटल प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ विकास नहीं हुआ, है कि नहीं। तो जो है क्योंकि उनका एक हायर एक्टिविटी है तो एक लोअर टेस्ट को भूल गए, वो नींद का एक लोअर टेस्ट है इस प्रकार से। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर हम देखते हैं भक्ति का जो मार्ग है वो आसान है इसलिए, और लेकिन जो ज्ञानी और तार्किक है उनको बिना कृपा के भक्ति का एक्सेस नहीं होता ऐसा है। और चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं मध्य लीला के अंदर ये महाप्रभु जो है रथ यात्रा समाप्त हो गया है और वहाँ पे ऐसा एक प्रसंग आता है बहुत सुंदर सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर के, वो क्या प्रसंग है कि तो अभी जगन्नाथ भगवान नीलाचल से जगन्नाथ मंदिर से कहाँ पहुंच गए, गुंडीचा मंदिर, और गुंडीचा मंदिर के पीछे सरोवर है, कौन सा सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर। तो सब भक्तगण उसके अंदर क्या किया करते थे, जल क्रीड़ा किया करते थे और महापुरुष स्वयं भी उसमें स्नान किया करते थे। तो ठीक है, आपने सकल भक्त सिंचे जल दिया, शब्द भक्त गणे सिंचे चौधरी के बेड़िया। महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों पर जल उछालते हैं, सारे भक्त भी उन्हें चारों ओर से घेर कर उन पर पानी उछालते हैं। ये भक्ति योग का प्रोसेस है, सिंपल एकदम है कि नहीं, भक्तों के संघ के अंदर। और कभू एक मंडल कभू अनेक मंडल, जल मंडुक वादे सब बाजा ये करताल। और जब जल में कभी एक वृत्त बनाते हैं और कभी अनेक वृत्त बनाते हैं, वे जल के भीतर करताल बजाकर मेंढकों की टराहट की नकल उतारते हैं और कीर्तन करते हैं। कभी कभी दो भक्त जोड़ी बनाकर जल में लड़ते, इनमें से एक जीत जाता दूसरा हार जाता, महाप्रभु ये सारा तमाशा देखते रहते। तो ये सब नित्य पार्षद है महाप्रभु के, है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स साधना भक्तों को ये प्लेटफॉर्म मेडिटेट नहीं करना चाहिए, ऐसा है। फिर चंद्र में बार बार वर्णन आता है कि जो महाप्रभु के नित्य संगी है, गौरांगे संगी गणे, वो राग मार्ग का फॉलो करते हैं वास्तविकता के अंदर। तो इसीलिए कभी कभी हमें उनके, और महाप्रभु आदर्श आचार्य हैं तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते, ऐसा है। लेकिन वो इस महाप्रभु की लीलाओं में पता लगता है कि किस प्रकार से जो भक्तगण थे वो प्रेम एकदम सर्वोपरि है किसी प्रकार के रेगुलेटरी प्रिंसिपल से, ऐसा है। फिर आगे सुनिए, अद्वैत नित्यानंद जले फैला फैली, आचार्य हरि या पाछे करेगा लागाली। पहला खिलवाड़ अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच हुआ, महाविष्णु और बलराम जी, वे एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे, अद्वैत आचार्य हार गए और बाद में नित्यानंद को गालियां देने लगे। विद्यानिधि, अभी आचार्य के अंदर बताते हैं अद्वैत आचार्य हार गए, अभी कोई अद्वैत आचार्य की साइड लेगा नित्यानंद की साइड लेगा, क्योंकि जब वो गालियां देंगे एक दूसरे को तो आपको लगेगा अद्वैत आचार्य ठीक है, फिर नित्यानंद को बोलेंगे तो आपको नित्यानंद को ठीक है, बाद में दोनों गलत हैं। अभी एक ठीक एक गलत है, दोनों गलत, जो भी ऐसा सोचेगा उसका पतन हो जाएगा, ऐसा है ना। तो नहीं हो, और फिर विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर पुंडरीक विद्यानिधि नाम लिखा, विद्यानिधि भी एक दूसरे पानी फेंकने लगे, मुरारी गुप्त दासदत्त के अंदर होने लगे, श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित राघव पंडित वक्रेश्वर पंडित भी ऐसे क्रीड़ा करने लगे। और फिर कौन क्रीड़ा करने लगे, सार्वभौम संगे खेले रामानंद राय, गांधी गेल दोहार हेल शिशुप्राय। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री रामानंद राय का जल क्रीड़ा करने लगे, वे दोनों अपनी गंभीरता त्याग कर बच्चों जैसे बन गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय की चंचलता देखी तो वे हंसने लगे और गोपीनाथ आचार्य से बोले, गोपीनाथ आचार्य की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ था, वो उनके बहनों ही थे। और महाप्रभु कह रहे हैं, भट्टाचार्य तथा रामानंद राय दोनों से कहो कि वे अपना बालकों जैसा खेल बंद कर दें, क्योंकि दोनों अत्यंत विद्वान गंभीर तथा महापुरुष हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे भाई उनको तो बोलो कम से कम बंद कर दें। गोपीनाथ कहे तो मार गोपीनाथ कहे तो मार कृपा महासिंधु, उछलित करे यबे तार एक बिंदु। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आपकी महान कृपा रूपी सिंधु का एक बिंदु उनके ऊपर उछलकर गिर पड़ा है। आपके कृपा सिंधु की एक बूंद सुमेरु तथा मंदर जैसे विशाल पर्वतों को डुबो सकती है, चूंकि ये दोनों महाशय लघु पर्वतों जैसे हैं, अतः ये दोनों आपके कृपा रूपी सिंधु में डूबे जा रहे हैं। तर्क उस शुष्क खली के समान है जिसमें सारा तेल निचोड़ लिया गया हो। खली क्या होना, ओके, तो उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इंग्लिश में जो वर्णन किया जाता है वो ऐसा है जैसे हम सब केक खाते हैं, है कि नहीं, और वो केक अगर बिना बटर का या बिना घी का हो कैसा होगा, केक नहीं होगा, कुछ और ही होगा, है कि नहीं। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि तर्क और शुष्क ज्ञान कैसा है, इट्स ऑयललेस केक, ऐसा केक जिसमें तेल घी कुछ चिकनाई कुछ नहीं है। तो जो है भट्टाचार्य का सारा जीवन ऐसे शुष्क खली को खाने में बीता, सारा जीवन जो है वो ऐसे निराकार भगवान के निराकार ब्रह्म के अंदर सोच रहे हैं, किंतु अब आपने उन्हें दिव्य लीलाओं का अमृत पान कराया है, निश्चय यह आपकी उन पर महती कृपा है। तो ये उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार से जो निराकार में है उनके अंदर कैसा परिवर्तन आता है, ऐसा। तो ये भक्ति योग है वास्तविकता के अंदर, और कृष्ण ऐसे भक्ति योग को गीता में बहुत गुणगान करते हैं। छठे अध्याय के अंदर कृष्ण बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वेशा मत गते अंतरात्मना, जो जिसका मन हमेशा मुझ में लगा हुआ है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, मतलब श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार से मेरा भजन करता है वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। एक अन्य जगह गीता में भगवान 11वें अध्याय के अंत में भी बोल रहे हैं, ना हम वैदैर न तपसा न दाने नचे जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा, कि ना वेदों से ना अध्ययन से ना तपस्या से ना दान से ना पूजा से तुम मुझे जान सकते हो, कोई इन साधनों के द्वारा मुझे नहीं जान सकते। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे जानेंगे आपको, तब गीता में भगवान निष्कर्ष खोल रहे हैं क्या, भक्तिवा तो अनन्य शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और इसी भक्ति का गुणगान करेंगे इस 7वें अध्याय के अंदर भी जो है। तो ये है, अब इस भक्ति की एक बहुत महानता है, एक महानता, कई महानताएं हैं भक्ति की, जगह जगह पर ग्लोरीफाइड है, लेकिन उसके अंदर एक महानता का मैं वर्णन करने का प्रयास करूंगा, वो ये है 11वें स्कंद के अंदर भागवतम के अंदर जो नवगुंदरस हैं वो बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है उसके बाद 5 प्रकार के क्या होते हैं, ऋण होते हैं, डेब्ट्स होते हैं। देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतुम। बोले 5 प्रकार के ऋण किसके प्रति है? देवर्षि, देवताओं के प्रति। क्यों? हम सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, हम में से आज तक किसी ने बिल भरा है BSES या NDPL है कि नहीं? यू नेवर पेड बिल ऑफ सन। अभी वायु का कभी बिल भरा है हमने? नहीं, कभी नहीं भरा। हम बारिश आती है उसका हम कभी टैक्स नहीं देते। तो इन देवताओं के प्रति हम क्या हैं? ऋणी हैं। देवर्षि ऋषि, ऋषिगण हैं, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवर्षि। भूताप्त नृणाम पितृणाम, भूत अर्थात सभी जीवों के प्रति हमारा ऋण है कि नहीं? और आप्त नहीं, भूताप्त अर्थात जीवों के संबंधियों के प्रति, नृणाम अर्थात मनुष्यों के प्रति, एंड पितृणाम अर्थात पितरों के प्रति जिन्होंने हमें यह शरीर दिया है। इस प्रकार से देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, इन सबके प्रति हमारा ऋण है, तो कैसे चुकाएंगे आप, है कि नहीं? ऋषिगण के प्रति आप अपना ऋण चुका सकते हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, लेकिन माता पिता का ऋण क्या चुका सकते हो आप? विवाह करके। तो एक साथ आप दोनों का ऋण चुका नहीं सकते आप, है कि नहीं? अब यह वैदिक किसी पैराडाइम किसी भी वैदिक विधि से आप 5वां ऋण चुकाना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन भक्ति में क्या है? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतुम। यदि भगवान मुकुंद की कोई शरण ग्रहण करता जो सर्वात्मना है, सारे डेप्ट उसके क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। जैसे मेरे को उदाहरण याद नहीं आ रहा, लेकिन और 4थे स्कंद में बता रहे हैं, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे सबको मिल ही जाएगा, है कि नहीं? पेट में भोजन डालेंगे तो सारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति की बहुत महानता है। और कई बार और भक्ति और भगवान की पूर्ण शरणागति की जो है अत्यंत महानता बताई गई है। लेकिन दुनिया के लोग जो हैं अनेक अनेक स्तर पे हैं, हर कोई समान स्तर पे नहीं है। तो जब कोई भगवान मुकुंद की पूर्णता शरण ग्रहण करता है तो वो एक लोअर लेवल के आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं। तो पहला लेवल क्या होता है? वो कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। क्या है? माता और पिता क्या है? भगवान के समान है। तो ये शास्त्रीय इंजंक्शन है, लेकिन किसके लिए दी गई है? ये शास्त्र ने बोला माता पिता की पूजा जो है भगवान के समान है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, जो माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करता, जो माता पिता का की ध्यान करता है, उसको शास्त्र क्या बोलते हैं? अभी आप जो है मातृ पितृ धर्म को छोड़ करके आगे बढ़ो, किसका धर्म पालन करो? अभी आप देव धर्म, देवताओं की उपासना करो, देवताओं का जो है, और उस ऋण से आप मुक्ति प्राप्त करो। और वो शास्त्र कंडेम करते हैं आप खाली माता पिता सेवा करो, नहीं देवताओं की सेवा करो साथ में, ऐसा है। तो और ठीक है, और जो देवताओं की पूजा करते हैं तो शास्त्र उन्हें और कंडेम करते हैं, बोले आप देवताओं की पूजा कर रहे हो, सकर्म कांड में लगे, सकर्म कर्म चाहते हो, आप किसकी बात करो? क्यों आप धर्म करोगे, देवताओं की पूजा करोगे, देव धर्म का पालन करोगे तो आपको क्या चाहिए? उसे आपको अर्थ चाहिए, काम चाहिए, इंद्रित्व करना है आपको? नहीं, आप क्या करो? मोक्ष धर्म का पालन करो। कि संसार से बाहर निकलो, ऐसा है जो है मुक्ति जो है क्या बोलती है, संसार के भौतिक चक्र से बाहर निकलो। जो मोक्ष धर्म का पालन करता है उसकी भी शास्त्र निंदा करते हैं, ऐसा है। देखो ग्रेजुअली एलिवेट कर रहे हैं हर किसी को धीरे धीरे, उसको भी बोलते हैं क्यों। धर्म अर्थ और काम ये क्या है, स्वसुख की इच्छा है, अपने सुख की इच्छा है कि भाई मुझे धन चाहिए, इंद्रियों चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए इत्यादि। और मुक्ति क्या है, स्व दुख निवारण की इच्छा है। है तो सेल्फ ही ना बीच के, मुक्ति क्या है कि मुझे कष्ट ना हो, मैं जगह से बाहर चले जाऊं। तो अल्टीमेटली आई एम द सेंटर, वो स्व दुख निवारण की इच्छा है। तो शास्त्र इसको भी कंडेम करते हैं और क्या कहते हैं, हाइएस्ट लेवल क्या है, कृष्ण ही का शरणम। और यही गीता के सार में कृष्ण भी क्या प्रस्तुत करें, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुचः। तो जब कोई भगवान मुकुंद की पूर्णतः शरण ग्रहण करता है तो सारे डेब्ट्स पूरे होते हैं। लेकिन कृष्ण, अब ये जो कृष्ण गीता में कहीं पर भी अपनी ड्यूटी को रिजेक्ट करने के लिए कहते नहीं। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, जंगल चल जाऊंगा। कृष्ण क्या कहते, नहीं लड़ो, कार्य मत त्यागो, है कि नहीं। जब सन्यासी के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं वो सन्यासी नहीं है जो कुछ कार्य नहीं करता, लेकिन वो सन्यासी है जो क्या करता है, कार्य करता है। अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कार्यम कर्म करोति यः, कि वो नहीं जो अग्नि नहीं जलाता बल्कि वो जो कर्म करता सारे कर्म फल मुझे अर्पण करता है, वो वास्तविक सन्यासी है। तो बोलते हैं तुम लड़ो लड़ो, अरे भाई लड़ो, अपना धर्म करो। तो ये किसी भी ज्ञान योगी या किसी भी भक्ति सॉरी अष्टांग योगी, किसी के लिए संभव नहीं है कि अपनी ड्यूटी को परित्याग करके वो यहाँ आ जाए। लेकिन भक्ति योग में यदि कोई अपने धर्मों को त्याग करके, मान लीजिए भावुकता में, गलती में, अनजाने में भी, बिना शुद्धिकरण हुए भी त्याग करके भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है तो भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरे भजन और पक्वा पथे त्यतो यदि। व्यासदेव के मन में यही क्वेश्चन था कि लोगों को अगर आप सीधा कृष्ण ही के शरणम का धर्म सिखाएंगे, भागवत धर्म सिखाएंगे, शरणागति सिखाएंगे, तो लोगों का शुद्धिकरण नहीं हुआ, वो कुछ समय करेंगे, बाद में तो उस पथ से च्युत हो जाएंगे। नारद मुनि क्या कह रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्यों, अगर पतन भी हो गया किसी का अपरिपक्व अवस्था में, को वा भद्रम अभूत अभूष्य किम, एक लाइन में भूल गया, वो बोल रहे हैं तभी भी जो उसने प्रगति किया है वो शाश्वत रूप से उसके साथ रहेगा। जैसे हम सब भक्ति कर रहे हैं, रोज हम मंगल आरती आते हैं, धोते कोदा डालते हैं, तिलक लगाते हैं, जप करते हैं, और मान लीजिए हम में से कोई माया के प्रभाव में आके 10 साल जो है भक्तों के संग से, भक्ति से दूर हो गया, हमारी माला घर में या टंगी रही ऐसे करके, 10 साल में वापिस आएंगे तो क्या हमें सिखाना पड़ेगा फिर धोती डालना है, तिलक लगाना, वो हमें आता होगा, है कि नहीं। तो उसी वो भक्ति की क्रिया इसी प्रकार से है कि कृष्ण का शरणम। और हम देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं, और लास्ट टाइम भी हमने क्लास में कर्ण और इत्यादि उदाहरण दिए थे, वो इस कंप्लीट सरेंडर को जो है अपने आचरण सिखाते हैं। जैसे बलि महाराज गुरु का त्याग किया उन्होंने, अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों का वध किया, विभीषण ने रावण का परित्याग किया, वसुदेव ने अपने सत्य को त्याग करके क्या किया, अपने 8वें पुत्र को गोकुल लेके गए, बोला था कि मैं कंस आपको दूंगा, है कि नहीं। और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के हत्यारे का जो है वजन कर रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो, है कि नहीं। तो हम देखते हैं जो कंप्लीट सरेंडर की एक्टिविटीज, भक्ति योग की एक्टिविटीज हैं, वो जो है वो लोअर लेवल के किसी भी धर्म को त्याग करना कभी भी पापपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं, इसीलिए वो कभी भी गलत नहीं है। और मुक्ति का असली अर्थ यही है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण नित्य दास, है कि नहीं। और या फिर मुक्ति का अन्य परिभाषा जो प्रभुपाद जी बताते हैं शास्त्रों में लिखा क्या है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर स्थित होना, ऐसा है। और बिल मंगल ठाकुर क्या कहते हैं, जो अगर भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो मुक्ति क्या करती है, उसके दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, क्या कि मैं आपकी सेवा करूं। और भक्त कहता है मैं बहुत बिजी हूं अभी भगवान की सेवा करने में जो है, तो असली वो है। और फिर भी यदि कोई मोक्ष चाहता है, सभी इच्छाओं से पूर्ण है, तो भागवतम का कथन क्या है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप बिना अकाम, आपकी कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम सारी इच्छाएं हैं, मोक्ष काम मोक्ष की इच्छाएं हैं, तभी क्या करो, तीव्रता से भगवान यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष की आप उपासना करो, ऐसा है। तो इसलिए जो ये है, इसके अंदर भगवान के इन गुणों का वर्णन किया है। और अभी और वर्णन आएगा, मैं एक मिनट में संक्षिप्त बताता हूँ कि नारद मुनि क्या कहने वाले हैं आगे। वो कहेंगे भगवान तो देखो इन तीनों गुणों से परे हैं, उनके लिए ये द्वंद है ही नहीं, जो द्वंद है ये भौतिक प्रकृति के अधीन है। तो निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख गर्मी सर्दी ये हम लोगों के लिए है, भगवान के लिए सब एक समान है। इसीलिए कोई भगवान भगवान की स्तुति करता है चाहे निंदा करता है, हमारे लेवल पे निंदा और स्तुति है, लेकिन भगवान के सर पे दोनों एक ही है, क्योंकि वो सोच तो भगवान के बारे में रहा है कि नहीं। और वो कह रहे हैं इसलिए जो इसीलिए शिशुपाल का क्या हुआ, वो भगवान के अंदर लीन हुआ, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित था, चाहे इनडायरेक्टली था, ठीक है वो शुद्ध भक्ति नहीं थी, वो इनिमिकल भाव से था, लेकिन था सततम कीर्तयंतोमा, ऐसा है कि नहीं। और नारद मुनि बाद में बड़ा विशेष गुणगान करेंगे इन जय शिशुपाल और सब असुरों का, इनकी कृष्ण भावना की जो मति है उसका गुणगान करेंगे, ऐसा है कि नहीं। तो भक्ति का मार्ग इसीलिए बहुत आसान है, और भक्ति की बहुत महान जो है महानता है, और जो भक्त भक्ति में लगे हैं, और यदि वो किसी निचले धर्म का परित्याग भी कर रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड भगवान मुकुंद के चरण कमलों की और उनके भक्तों के चरण कमलों की शरण बहुत तीव्रता से ग्रहण करनी चाहिए, और कस से ग्रहण करनी चाहिए। और यही सार्वभौम भट्टाचार्य जो है जगन्नाथपुरी के अंदर थे, और एक दिन महाप्रभु के पास आए और क्या बोल रहे हैं, बोले व्यासदेव ने भागवतम में एक श्लोक लिखा है लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी है। कौन सा श्लोक है वो, ज्ञाने प्रय नहीं विश्वास ग्रेटिट्यूड वाला, जो विपदाओं के अंदर मुक्ति पदे सदाय भाग, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग अपूर्व विदतम नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो कह रहे हैं मुक्ति पद क्यों लिखा है यहाँ पे, यू नो अब मुक्ति नहीं चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले मुक्ति के पीछे सबको मुक्ति के उपासक थे, मुक्ति के पथ में लेके जाते थे, बोले इसका नाम मैं काट कर क्या लिख रहा हूँ, जीवे तयो भक्ति पदे सदाय भाग। तो महाप्रभु दिखाए, महाप्रभु बोले अरे व्यासदेव का वर्ड मत काटो आप, जो है व्यास ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और फिर महाप्रभु मुक्ति पद की परिभाषा करते हैं, मुक्ति पदे तो एक परिभाषा कहते हैं कि अल्टीमेट मुक्ति क्या है, वो भक्ति ही है। और दूसरा बोलते हैं मुक्ति पद, अर्थात मुक्ति पद मतलब भगवान के चरण कमलों को मुक्ति पदे कहा जाता है, तो भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता है, व्यास ने लिखा बिल्कुल ठीक है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। तो सारा मतदारों को बड़ी खुशी होती है कि हाँ वो, और पूरी भक्ति का प्रयास कर जो है वो प्रचार करते हैं और पालन करते हैं, और वो बेचारे ऑयललेस केक ड्राई केक सूखे केक ना खा करके ये भक्ति के जो है 56 भोग खा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं। और बाद में उन्होंने श्लोक लिखा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर हारी कृपा मुदिर्यस तमहम प्रपद्य। लेकिन इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हमारे जीवन में जब भक्ति करते हैं ये ज्ञान योग की जो है टिंट जो कंटेमिनेशन हमारे जीवन के अंदर भी रहते हैं, कैसे हमारा सेवा मन नहीं लग रहा है कि नहीं, हम प्रैक्टिकल सेवा ना कर करके अपनी इंद्रियों के भंग की सेवा ना लगा के मन को कृष्ण चरणामृत में ना लगा करके कुछ कुछ स्पेकुलेशन में लगा लेते हैं, ऐसा है। तो ये हमारे जीवन के अंदर भी जो है इस ज्ञानों के कलमश हैं या कंटेमिनेशन है, और इस शुद्ध भक्ति के प्रयास पे ठीक नहीं है। शुद्ध भक्ति का मतलब है 24 घंटे भगवान को भक्त को भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। कायेन मनसा वाचा केवल इंद्रिय रपि, जो है मनसा वाचा कर्मणा है भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वो वास्तविक भक्ति कहलाएगी, तब वो योग मिश्रित और जो है ज्ञान मिश्रित भक्ति से शुद्ध शुद्धिकरण होगा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसी भक्ति चाहते हैं, शुद्ध भक्ति, ऐसा है। तो ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, सबसे भक्तों बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।